संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में अगला चरित्र हम करते हैं श्री पुरूरवा जी का, श्री राधेश्याम। पुरूरवा जी ऐसे राजा थे जिनकी माँ सूर्यवंशी थी और पिता चंद्रवंशी थे। सूर्यवंशी जिसमें भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ और चंद्रवंश जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो पहले इनके माता पिता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रह्मा जी से मरीचि ऋषि हुए, मरीचि जी से कश्यप जी हुए, कश्यप की पत्नी अदिति, अदिति और कश्यप जी से देवताओं का जन्म हुआ जिनमें विवस्वान सूर्य जी का जन्म हुआ, सूर्य की पत्नी संज्ञा, सूर्य और संज्ञा से उत्पन्न हुए श्राद्धदेव मनु जी जिन्हें विवस्वत मनु भी कहते हैं। मनु जी के 10 पुत्र हुए जिनसे इश्वाकुवंश वंश है, जो सूर्यवंश चलाए इश्वाकुवंश, उसमें भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। इनके 10 पुत्रों में और एक पुत्री थी इला नाम की, तो यही इला नाम की पुत्री पुरूरवा की माँ हुई। तो इला जी का कैसे जन्म हुआ थोड़ा ये भी जान लेते हैं। पहले मनु जी के कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने एक पुत्रेष्टि यज्ञ करा। वशिष्ठ जी ने बहुत सारे उद्वर्वी और होता ऋषियों को बुला करके एक यज्ञ करवाया। तो उसमें ये तो चाहते थे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो मनु जी, जबकि इनकी पत्नी चाहती थी कि हमें पुत्री मिले। तो क्या हुआ कि होता को इनकी रानी ने कहा कि मुझे पुत्री ही होनी चाहिए, तो विपरीत कर्म और मंत्र करा दिया उनसे। उससे जो चरु हुआ, इन्होंने चरु ग्रहण किया और उसके बाद इनको हुई पुत्री। पुत्री हुई तो मनु ने वशिष्ठ जी को कहा कि ये कैसा हुआ, हमने तो पुत्री एक कराया था। उन्होंने तप के बल से जान लिया कि ये इनकी पत्नी का सब कर्म है किया हुआ, तो उससे ही इन्हें ऐसा हुआ है। पर वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम चिंता ना करो, हम इस पुत्री का ही पुत्र बना देंगे। उन्होंने भगवान नारायण की आराधना की, भगवान नारायण प्रसन्न हुए। तो वशिष्ठ जी ने उनसे वरदान मांगा कि ये इला नाम की कन्या पुत्र बन जाए, तो वो सुद्युम्न नाम का पुत्र बन गई। उसका नाम रखा गया सुद्युम्न। सुद्युम्न बहुत सारे अपने घुड़सवारों को लेकर, अपने राज्य के कर्मचारियों को लेकर के, कुछ मित्रगणों को लेकर घूमते हुए, शिकार करते हुए घूमता था। तो एक बार वो भगवान शिव की, जहाँ पे भगवान शिव विहार करते हैं माँ पार्वती के साथ में, उस वन में पहुँच गया। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत में पहुँचा हुआ था। उस वन में पहुँचते ही उसने देखा कि जितने भी लोग थे, उसके मित्र थे, जितने राज कर्मचारी थे, सब स्त्री बन गए हैं। उसका घोड़ा घोड़ी हो गया, वो स्वयं स्त्री बन गया है। वही वो स्त्री रूप उसने अपने आप का देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। अब वहाँ पर भूमंडल में बहुत सारे लोगों को ये आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोग स्त्री कैसे बन गए, परंतु अब कुछ नहीं किया जा सकता था। ये वहाँ से लौट के आया, घूमते हुए दूसरे एक वन से दूसरे वन में जो घूम रहा था स्त्री बने हुए, चकित था। इनकी दृष्टि पड़ी बुद्ध पे और बुद्ध की दृष्टि पड़ी इन पे। अब थोड़ा सा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं, बुद्ध कौन है। ब्रह्मा जी से अत्रि ऋषि प्रकट हुए, अत्रि जी से चंद्रमा जी हुए, चंद्रमा के थे बुद्ध और चंद्रमा जी के बुद्ध, बुद्ध को देख करके देवता भी मोहित हो गए थे। ये इतने सुंदर थे बुद्ध, और देवता भी ने, बृहस्पति जी खुद इन्हें अपना पुत्र रूप में स्वीकार करना चाह रहे थे, पर ब्रह्मा जी के कहने से इनको चंद्रमा को ही दिया गया, चंद्रमा पुत्र थे। तो ये इतने सुंदर थे बुद्ध, बुद्ध को देख करके जो अभी सुद्युम्न लड़की बने हैं यानी इला बने हैं फिर से, वो बुद्ध पे मोहित हो गए। बुद्ध भी इला पे देख के इनको मोहित हो गया, दोनों ने विवाह कर लिया। और विवाह कर लिया तो इनसे इनके ही पुत्र हुए पुरूरवा, पुरूरवा इनके पुत्र हुए। परंतु ये जैसे ही वापस आई इला नाम की कन्या राजमहल में वापस आई, तो मनु ने फिर देखा कि मेरी तो ये पुत्री बन गई है इला। फिर इन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने भगवान शिव की, उन्होंने पता चला कि कैसे बनी है, तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। इन्हें पता चला कि उस वन में भगवान शिव ने माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ये वरदान दिया हुआ था कि इस वन में मेरे अलावा जो भी पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री रूप हो जाएगा। क्योंकि एक बार माँ पार्वती के साथ भगवान शिव विहार कर रहे थे उस वन में, तो बहुत सारे ऋषि मुनि उनका दर्शन करने के लिए आ पहुँचे बिना कुछ भी वो पहले से सूचित किए हुए। तो भगवान शिव को ऐसे ही दर्शन करने आए तो माँ पार्वती एकदम से ऋषि को देख के घबराई। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, आज के बाद इस वन में जो भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। तो अभी वशिष्ठ जी ने भगवान शिव को पुकारा, भगवान शिव आए और उनसे वरदान मांगा कि महाराज इस कन्या को तो मैंने भगवान विष्णु से बोल के इसको पहले पुरुष बनाया था। भगवान शिव कहने लगे कि देखो, पार्वती जी की भी लाज रह जाए और तुम्हारी भी, तो ये साल में एक साल ये कन्या रहा करेगी और एक साल ये पुरुष रूप रहा करेगा। तो वो एक साल इला रहती थी और एक साल सुद्युम्न, यही इला थी जिनके पुत्र हुए पुरूर्वा। पुरूर्वा इतने सुंदर थे बुद्ध के समान, ये भी इतने सुंदर थे, सुंदर ही नहीं थे तेजस्वी थे। ये युद्ध में इनका कौशल ऐसा था कि बड़े बड़े राजाओं को ये परास्त कर दें, तो इनके सामने टिकने वाला कोई नहीं था। एक बार स्वर्ग में नारद जी इनके पौरुष का वर्णन कर रहे थे कि भारतवर्ष में एक राजा है पुरूर्वा, जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, मतलब उसके सौंदर्य शील उसके पौरुष का वर्णन संभव नहीं है। तो वहाँ पर उर्वशी जी मोहित हो गई और उनके मन में आया कि क्यों ना हम जा करके इनसे मिला जाए, देखा जाए इनको। हालांकि उर्वशी जी ऐसे ही मोहित नहीं हो सकती थी, उनको मित्र वरुण का श्राप था, वो एक अलग कथा है। तो श्राप के कारण ये पृथ्वी लोक पे आई, पर ये मोहित नारद जी से सुनकर हुई, तो इसलिए आई और पुरूर्वा से ही मिलने के लिए चली। पुरूर्वा के राजमहल की तरफ गई, उन्होंने पुरूर्वा को देखा, पुरूर्वा उर्वशी को देखकर मोहित हो गए और आपस में दोनों विवाह करके रहने लगे। पर उर्वशी की एक शर्त थी कि मैं तुम्हें छोड़ के उस स्थिति में जा सकती हूँ कि यदि मैंने तुम्हें सिर्फ जब हम सहवास कर रहे हो, उसके अलावा अगर मैंने तुम्हें नग्न अवस्था में देख लिया तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। एक दूसरा, उन्होंने अपने दो भेड़ के बच्चे दिए जो उनको प्रिय थे कि इनका पालन तुम्हें करना है, दो शर्त। तीसरी थी कि मैं सिर्फ घी का सेवन करूंगी। इन्होंने तीनों शर्तें उनकी स्वीकार की और बड़े सुख से व्यतीत कर रहे थे जीवन। इससे पहले ये बड़े धर्मज्ञ राजा थे, धर्म का बड़ा पालन करते थे और ये भगवान के बड़े भक्त हुआ करते थे पुरूर्वा। लेकिन जब से उर्वशी जी आई थी, उर्वशी जी में ये इतने आसक्त हुए, इतने मोहित हुए कि सब कुछ भूल गए और उन्हीं में आसक्त रहते थे, कब दिन निकल रहा है कब रात हो रही है इन्हें कुछ नहीं पता। उर्वशी जी के रूप पर इतने मोहित थे। जब उर्वशी जी के श्राप का समय पूरा हुआ, इंद्र ने स्वर्ग में उर्वशी को याद किया और गंधर्व को भेजा। दो गंधर्व आए इन्हें लेने के लिए। गंधर्वों को पता था कि पुरूर्वा से उर्वशी को ले जाना असंभव है, वो जाने नहीं देगा, वो देवताओं को भी परास्त कर देगा युद्ध में, तो कैसे लेके जाएं। उन्हें पता था कि उर्वशी ने वरदान दिया है कि भेड़ के बच्चे सुरक्षित रखने हैं और नग्न वाला भी उन्हें पता था, तो उन्होंने दोनों भेड़ के बच्चे उनके रात में उठा लिए, उठा के वो लेके चले गए। अब वो जब जा रहे थे तो उन आवाज़ करते हुए बच्चे जा रहे थे, वो आवाज़ करते थे, उर्वशी ने सोते हुए वो आवाज़ सुनी बच्चों की, तो वो एकदम से उठी और उसने देखा कि ये तो गंधर्व लिए जा रहे हैं मेरे बच्चों को। उन्होंने पुरूर्वा को उठाया, बोला तुम सो रहे हो, मेरे बच्चे ले गए वो, तो ये नींद में ही, क्योंकि उर्वशी ने कहा था ये कपड़े पहनने का भी इन्हें भान नहीं रहा और ये नग्न अवस्था में ही उठकर चले गए कपड़े उनको लेने के लिए। जैसे ही ये वहाँ से आकाश मार्ग में ऊपर की तरफ चले तो उन्होंने अपना तेज प्रकट किया, गंधर्वों ने तेज प्रकट किया, तो उनकी प्रकाश में, तेज के प्रकाश में ये नग्न दिखाई दिए और ये देख लिए नग्न उर्वशी ने। और उर्वशी का कहना था, शर्त थी कि यदि मैंने सहवास से अलग तुमको नग्न देख लिया तो मैं छोड़ के चले जाऊँगी, और वो छोड़ के चली गई कि अब मुझे निकलना है। उसने बहुत समझाने का प्रयत्न कहा कि नहीं, मेरी ये प्रतिज्ञा थी, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण ही, मैं निकल जाती हूँ। वो निकल गई, ये पृथ्वी पे मारे मारे फिरने लगे, राजपाट सब छूट गया, भूल गया, हाय उर्वशी, हाय उर्वशी, इनको इनके कब दिन कब रात, ये स्थिति होने लगी इनकी कि बस सिर्फ हाय उर्वशी, हाय उर्वशी। उस अवस्था में दिन बीतने लगे। एक बार ये कुरुक्षेत्र पे सरस्वती नदी के तट पर घूम रहे थे जंगलों में, तो वहाँ इन्हें उर्वशी दिखाई दी, वो नदी के तट पर अपनी कुछ सखियों के साथ में, कुछ अप्सराओं के साथ में बैठी हुई थी। इन्होंने देखा उर्वशी है, तो ये दौड़ के गई उर्वशी के पास और रोने लगे कि मेरी स्थिति देखो। उर्वशी ने भी देखा कि राजा ने अपनी स्थिति क्या कर ली है। उर्वशी ने इनको समझाया कि भाई स्त्रियों का भरोसा नहीं करना चाहिए, ये तो अपना मतलब साधती है, मतलब निकल जाता है तो स्त्री किसकी है, हम अप्सराएं हम थोड़ा ही ऐसे रुकेंगे कि हम हमेशा आपके साथ रहें, तो इसलिए हमें तो जाना ही था। फिर भी वो रोता रहा, नहीं मैं नहीं जी सकता, आपके बिना नहीं जी सकता। उर्वशी जी को उस पर दया आई, उसने कहा ठीक है मैं इतना कर सकती हूँ कि साल में एक रात आपके साथ गुजार सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, मैं बाधित नहीं हो सकती हूँ, ऐसे मृत्युलोक में रह ही नहीं सकती मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, एक रात ही सही। तो पूरे साल उसका इंतज़ार करते थे, वो रात कब आए और वो कब रात आती थी और कब बीत जाती थी पता नहीं होता था। पर उर्वशी ने कहा था उस रात में मैं तुम्हारा गर्भ रखूंगी और अगले साल आके तुम्हें बच्चा दे दिया करूंगी तुम्हारा। तो ऐसे ही वो छः साल तक आती रही और छः बच्चे उनको देती रही। छठे साल ये रोने लगे फिर उन्हें देख करके कि ऐसे मेरे से रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। उर्वशी जी ने कहा कि तुम गंधर्वों की उपासना करो, अगर गंधर्व प्रसन्न होंगे तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए मुझे तुम्हें दे दें। तो ये तो जुट गए उपासना में और इनकी उपासना की विधि से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने इन्हें एक अग्नि की एक काष्ठ प्रकट करने वाली स्थली दी। उस स्थली को ये अपने हृदय से चिपकाए घूमते रहे। इन्हें होश ही नहीं है, इन्हें लगा यही उर्वशी है, गंधर्वों ने दी तो उर्वशी होगी। अब ये उसे घूमते रहे, जब इन्हें होश आया देखा अरे ये तो अग्निस्थली है, तो ये उसको वन में ही छोड़ के वापस आ गए और फिर ये साधना में लग गए। इन्होंने घोर साधना की भगवान की कठिन साधना से इन्हें ज्ञान हुआ और इनके हृदय में त्रिवेद प्रकट हो गए। तीन वेद इनके हृदय में प्रकट हुए वेद, तो इन्हें ज्ञान हुआ। ये वापस जंगल में गए जहाँ पे इन्होंने स्थली को छोड़ा था। स्थली को इन्होंने उठाया और उठा करके जहाँ पे स्थली थी वहाँ पे शमी के वृक्ष में पीपल का वृक्ष जमा हुआ था, तो इन्होंने उसकी दो काष्ट ली, उनसे मंथन किया। मंथन करने से अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि के इन्होंने तीन रूप प्रकट किए, अग्नि के भी वो पुत्र रूप में तीनों अग्नियाँ स्वीकार की इन्होंने। ये त्रेता का प्रारंभ हो चुका था यहाँ से। तो त्रेता से पहले देवता एक ही थी नारायण और वेद ओमकार रूप था, तो यहीं से त्रिवेद प्रकट हुए। पुरूर्वा से ही त्रिवेद प्रकट हुए, त्रि अग्नि प्रकट हुई और फिर इन्होंने उपासना की भगवान की, तो भगवान की उपासना से इनको गंधर्व लोक मिला, इनको उर्वशी मिल गई। तो ये था कि देखो जितनी उपासना इन्होंने उर्वशी को प्राप्त करने में है, जो ये पहले भगवान के भक्त थे इन्होंने कितनी उपासना ये भगवान की करते तो भगवान प्राप्ति हो जाती, पर इन्होंने उर्वशी प्राप्त करने के लिए इतनी उपासना की, अपना इतना समय इन्होंने खो दिया है सिर्फ उर्वशी प्राप्त करने के लिए, तो इनको उर्वशी की ही प्राप्ति हुई। यहाँ तक कि बीच में जो भगवान की साधना की उससे इनके हृदय में वेद प्रकट हुए हैं, पर वेद में भी इनका मन फिर भी वहीं लगा हुआ था। कर्मकांड, वेद के तीन भाग हैं, उपासना कांड, ज्ञान और कर्म। तो इन्हें ये कर्म मार्ग में इनका विश्वास था, कर्म मार्ग के औचित्य से इनके हृदय में वही रहा कि मुझे मेरी उर्वशी मिलनी चाहिए, तो भगवान की कृपा से इनको उर्वशी और गंधर्व लोक की प्राप्ति हुई। यही पुरूर्वा है। आगे इनके वंश में बहुत सारे राजा प्रकट हुए जिनका इतिहास अवर्णनीय है। ययाति जी हुए, यही वंश है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, अर्जुन आदि बहुत सारे, ये सब पुरुवंशी हुए। तो पुरु जी की ये कथा यहीं पे विराम करते हैं और इससे हमें यही मिलता है कि हम यदि किसी भी भगवान की किसी भी माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, चाहे वो धन है चाहे स्त्री है या कोई भी माया है, उसके चक्कर में पड़ेंगे तो हम भगवत स्वरूप को भूल करके उसी माया के ही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान की उपासना को छोड़ करके, पहले भगवान भक्त थे और वो पड़ गए माया की किसी चक्कर में भगवान की, तो वो उसी में ही पूरा जीवन उनका निकल गया। जहाँ भगवत प्राप्ति होती वहाँ उन्होंने उसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसी में पुरूर्वा जी भी। तो यहीं पे हम विराम देते हैं, अगले चरित्र के साथ फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।